आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रगुजार हूं मैं।
अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज, अब मैं चलता हूं। अच्छा फानी साहब, ये जो कॉन्टेक्ट था उसका क्या हुआ?
नहीं, मैंने सारी जगह छान मारी लेकिन ढूंढ नहीं पाया। मिल गया तो मैं जरूर आपके लिए भेज दूंगा। भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाड़ के फेंक दूंगा ताकि आप मुतमईन हो जाए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं चलता हूँ।
मेहरबानी,
खुदा हाफिज।
बहुत शुक्रिया।
ओके जनाब,
मैं शर्मिंदा हूँ।
अरे फराना, तुम बहुत तेज चला रही हो।
जब मैं आ रही थी तो अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी।
हेलो,
कहाँ हो?
तुमसे क्या मतलब?
तुम्हारा चेक भेजना चाहता हूँ।
वहीं पर रहने दो, मैं खुदा के ले लूंगी।
देखो, तुम इसके बाद कभी भी यहाँ पर नहीं आओगे, समझ में आया? अब भी मैं चेक को टैक्सी के जरिए भेज रहा हूँ।
मैं इस वक्त घर पे नहीं हूँ, कल भेज दो।
अपने कान खूब खोलकर सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज के बाद ना मैं किसी शहर बुजुर्ग महर को जानता हूँ और ना तुम फरहाद फानी को। और हाँ, दोबारा आपने उस दोस्त की बातों में आके मुझसे भत्ता लेने की कोशिश मत करना, वरना अगली दफा मैं भी दूसरे तरीके से पेश आऊंगा। समझ में आ रहा तुम्हारे?
फानी था?
हाँ।
किस चीज का कहा कि कल भेजे?
चेक।
क्यों?
क्योंकि तुम्हारी अम्मी को अस्पताल ले जाना पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ रहूं।
जरूरत हुई तो मैं खुद ले जाऊंगी। मैं तुम्हें किसी टैक्सी एजेंसी के सामने उतार देती हूं, तुम घर जाके उसे फोन करना और कहना कि चेक भेज दे।
अरे क्या फर्क पड़ता है, अब तो वैसे भी बैंक बंद है, कल भेज देगा।
अरे सुनो, कल इस पैकेट को इस एड्रेस पे भेज देना, अर्जेंट भेजना।
जी। पुनाक अदल स्ट्रीट, बेल नंबर 4। ईरान फर्दा कंपनी। जी फरमाइए।
सलाम जलीली साहिबा।
अलैकुम अस्सलाम शाइस्ता मैडम, कैसी हैं आप?
शुक्रिया। फानी साहब हैं?
जी, होल्ड रखिए।
अब क्या बात है?
माफ कीजिएगा फानी साहब, शाइस्ता मैडम लाइन पर हैं।
मिला दो।
जी।
अस्सलाम वालेकुम बेगम।
वालेकुम सलाम। सामान सब मिलने के लिए क्यों नहीं भेजा?
ओह, तुम्हें बताना ही भूल गया था। आज उस्ताद अहमद को फोन करके पूछा, उसने कहा कि नहीं आ सकता, किसी और काम में मसरूफ है, 2 हफ्ते तक हमारे घर को पेंट नहीं कर सकता। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा आने की जरूरत ही नहीं है।
मगर वो तो अभी यहाँ है।
वहाँ? किस लिए?
कह रहा है कि सामान रखने आया है ताकि काम शुरू करे।
फोन उसे दो, मैं उससे कह दूंगा अब जरूरत नहीं है।
अब तो आ ही गया है ना, कल से काम शुरू करने दीजिए ना उसे।
छोड़ो बेगम, वो एक झूठा वादा खिलाफ इंसान है। हमारा काम अधूरा छोड़ के किसी और काम में लग जाएगा और हमें मजबूरन मजीद 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा।
आप तो कह रहे थे अच्छा आदमी है।
मैंने कहा था गलती की थी। फोन दो उसे, मैं उसे चलता करता हूँ।
ठीक है। ये लो फानी साहब है।
मुझसे काम है?
जी।
अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब।
उस्ताद अहमद, क्या आपने नहीं कहा था कि 2 हफ्ते तक नहीं आ सकते?
सोचा मैं आपके सामने झूठे ना बन जाऊं, इसीलिए उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जाओ दूसरे काम पे लग जाओ।
जनाब, मुझे घर को पेंट नहीं करवाना है।
क्यों इंजीनियर साहब?
अभी सारा मामला खराब हो जाएगा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। और तुमसे तो कहा था मैंने ना कि किसी बहाने की तलाश में हूं
कि अपनी बीवी को भेज दूं ताकि वो अपनी माँ से सुलह कर ले।
सुलह हो गई?
उस्ताद अहमद, मेरी बीवी के सामने इस तरह से नहीं बोलना,
समझ जाएगी कि ये सारा एक
प्लान था, मुझसे नाराज हो जाएगी।
आप अपना सामान समेटें
और मेरी बेगम से कहें कि आपके शौहर मुझ पर बहुत गुस्सा थे
इसलिए उन्होंने मना कर दिया है।
इंजीनियर साहब, मैं झूठ नहीं बोल सकता।
अच्छा ठीक है, फोन काट दो,
खुदाफिजी करो और बाहर चले जाओ।
मैं खुद आके तुमसे बात करता हूँ।
ठीक ठीक, खुदाफिज। खुदाफिज मैडम।
खुदाफिज।
क्या हुआ, क्या कर रही हो? क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही हो, पछता रही हो क्या?
ज्यादा बनी मत, जाए अंदर।
अंदर आइए, अंदर आइए भाई, अंदर आइए। अरे वाह,
वालेकुम सलाम।
ये लीजिए, ये है आपकी पोती, अपनी दादी की दुआएं लेने आई है।
मेरी बच्ची दादी से प्यार लेने आई है, मेरा बच्चा।
सलाम अम्मी जान।
वालेकुम सलाम, ठीक हो? पहले क्यों नहीं बताया, मैं कुछ खाना तैयार कर लेती।
असल में परस्तों का इसरार था कि आपसे जल्द से जल्द मिले, इसीलिए आज जिद करने लगी और हम निकल आए। कोई बात नहीं, अभी फोन करके बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, कोई बात नहीं।
नहीं जरूरत नहीं, मैं खुद तैयार कर लूंगी।
अम्मी मुझे माफ कर दें, मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था।
तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं नाराज हो जाऊं।
आखिरी महीनों में मेरी तबीयत खराब थी, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती थी। अगर मैंने आपको दुख दिया तो यकीन माने जानबूझ के नहीं था, माफ करें।
नहीं भाई, कैसी बातें करती हो, बहुत अच्छा किया।
शुक्रिया।
ये लीजिए
ना, इसे मुझे दो।
ये लीजिए ना,
बच्ची
जाओ अपनी दादी के पास जाओ,
गुड़िया को मुझको दो ना। कितनी प्यारी लग रही मैं बच्ची, मेरी जान, मेरे घर का चिराग है ये तो, मेरी बेटी है ये तो।
जनाब आइए आइए।
बहुत बहुत शुक्रिया
मैडम, माफ कीजिएगा, आइए अंदर
आइए।
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम अस्सलाम।
प्लीज प्लीज
आइए, बैठिए जी। तशरीफ रखिए
आप, तशरीफ रखिए आप, तशरीफ जी। मैं मेहदी फरामंद हूँ, ये लीजिए
जी।
असल में मुझे बताया गया है कि मेरी चचाजाद लैला इस स्कूल में पढ़ती है
जी। सरज साहिबा ने आपके बारे में मुझसे बात की है।
तो आपको ज़रूर बताया होगा कि लैला के वालिद के ख़ानदान की क्या ख्वाहिश है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मुझे अपनी चची से मिलने का कोई इंतज़ाम कर दें।
असल में मैंने सरज साहिबा को भी बता दिया था कि हमें तालिब इल्म के घर का एड्रेस किसी को देने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं ये इंतज़ाम कर सकती हूँ कि आप स्कूल में उनसे मिलें।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा, अलबत्ता मुझे कोई इसरार नहीं है कि आप मुझे उनका एड्रेस दें।
आपसे एक और गुजारिश है, अगर उन्होंने किसी भी वजह से आपके साथ लैला की मुलाकात मुनासिब नहीं समझी तो प्लीज़ आप ख़ुद उनसे बात करने की कोशिश ना करें। वादा करते हैं?
नहीं, वादा नहीं कर सकता। देखिए, चाची को अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला करने का हक़ तो है, लेकिन चचाजाद बहन के बारे में उनको अकेले फैसला करने का हक़ नहीं है।
तो फिर बात ख़त्म।
देखिए मैडम फातिमा, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरी मदद करें। मैं जानता हूँ कि मेरे चचा की फैमिली मुश्किलात का शिकार है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि आप मेरे लिए शर्त वगैरह रखें। और मैं यहाँ आपके साथ चंद मिनट बात करूँ और खाली हाथ लौट कर कहूँ कि मेरे खुदा तेरा शुक्र है कि मैंने अपनी अखलाकी दीनी और शरई जिम्मेदारी पूरी कर ली, जाके अपने काम में लग जाओ। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने चचा की फैमिली की मदद करना चाहता हूँ, उन्हें अपने घर वापस लाना चाहता हूँ।
लैला की अम्मी की इजाज़त के बगैर आपको उससे मिलने का हक नहीं है।
तो ठीक है फातिमा साहबा, आप यही बातें जो मैंने आपकी खिदमत में की मेरी चची को बताएं, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें।
ठीक है, आप अपना फोन नंबर यहाँ रखें, मैं आपको फोन करूंगी
जी। जरा अपना पेन दीजिएगा।
लीजिए।
अपना मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ।
ठीक है।
बरसों बरस गुजर गए, हाय अफसोस उम्र गुजर गई, जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया।
ये लीजिए।
सलाम अलैकुम।
वाह सलाम मेरी जान।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा?
लीजिए।
मैं कुर्बान जाऊं।
परस्तु अभी अभी उस तरफ गई है।
अच्छा, आप ठीक हैं दादा जान?
अरे ये बताओ
जी,
काम के लिए कोई जगह ढूंढ सके?
अभी तो नहीं दादा जान।
ओहो,
तुम्हारी नन्नी को आज नहलवाया है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।
तुम उठ के उनके पास जाओ, हम भी अभी आते हैं।
जी माफ कीजिएगा। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम फरहमान साहब, मैं फातिमिया स्कूल से बोल रही हूँ।
वालेकुम सलाम जी, फरमाइए।
आप जरा यहाँ तशरीफ ला सकते हैं, हमने गफ्फारी साहिबा के साथ तय किया है।
आज?
जी वो आज आएंगी आपसे मिलने। मेहरबानी करके स्कूल की छुट्टी के बाद 4 बजे यहाँ पहुँच जाइए।
जरूर सर, आंखों पर, बिल्कुल।
ओके फिर, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
क्या हुआ है?
क्या हुआ? कुछ नहीं दादी जान, बस मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश
हूँ।
दादी जान, मैं कुर्बान जाऊँ, मैं चलता हूँ।
ये दुनिया अब ही नहीं की है।
हाँ बिल्कुल।
बस बेटा खत्म हो गया।
परस्तु बताओ जरा, किसने फोन किया मुझे?
किसने?
लैला के स्कूल के हेडमास्टर्स ने।
अच्छा इतनी जल्दी?
हाँ हाँ, आज 4 बजे तय किया है कि सोसन चची वहाँ आएंगे और मैं जाके मिलूँ। काश तुम भी आती।
क्यों?
क्योंकि इतने सालों के बाद मैं उनसे आंखें नहीं मिला सकता, शर्म आती है, समझ नहीं आता क्या कहूँ।
मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो बातें आपसे करना चाहेंगे मेरे सामने मुनासिब ना हो, शायद मुझे देख के कुछ कह ही ना पाए।
मेरी बेटी को सर्दी न लग जाए?
नहीं, खूब कपड़े पहनाए कि सर्दी न लगे।
बाबा की जान।
मेरी जान।
आज कैसा रहा?
ठीक ही था। तुम पिछली क्लास में नहीं थी ना?
नहीं, मैं पिछली क्लास में गैर हाजिर थी।
कोई बात नहीं, मेरे पास नोट्स हैं।
वाकई मेरे लिए ला सकती हो?
हाँ, बस आज रात मुझे फोन कर लेना, बस याद दिलाना कि मैं तुम्हारे
लिए लेती हूँ। नाजी देखो फरहमान साहब।
अच्छा छोड़ो, तुम उनकी तरफ मत देखो।
माफ कीजिएगा मिस असली, मिस असली एक मिनट, माफ कीजिएगा।
नाजी सताना बुरी बात है, बेचारी की शक्ल तो देखो।
ठीक है चलो, तुम
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
नाजनीन माफ़ करना, मैं जानता हूँ मुझसे नाराज़ हो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मुझे एक और मौका दे दो, इस बारे में बात कर सकते हैं?
जी।
मुझे माफ़ कर दो, तुम जानती हो तुम्हारे बारे में क्या सोच रखता हूँ, लेकिन उस दिन तुम मेरा मतलब गलत समझी। मानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन फ़ोन कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया?
घर पे नहीं थी, मोबाइल का चार्जर भी नहीं था।
यूनिवर्सिटी आया था, यहाँ पे भी नहीं देखा।
ये क्या है?
ये जो है लोन लेने की मिठाई है।
इतनी जल्दी मिल गया?
जी हाँ।
अब ये है क्या, अभी से तुमने फजूल खर्चे शुरू कर दी ना?
नहीं, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो हमारा हिस्सा बनता है, ये खर्च कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि नाज़नीन समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ। सोचा तुम्हें जेवर वगैरह तो पसंद नहीं है, तो बेहतर है यही ले लूँ।
तो ये है क्या, दिखाओ।
नहीं ना, तुम गेस करो।
मुझे क्या पता, दिखाओ ना।
नहीं दूंगा, देखता हूँ बता सकती हो कि नहीं।
मैं क्या जानू।
ये लो, खोल लो इसे।
वाओ।
मैं जानता हूँ कि इस अरसे में बहुत तुम्हें तंग किया। यकीन मानो मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें खुश करना है। अपनी जिंदगी में तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
मेहरान, ये क्या खरीद लाए हो, जाओ इसे वापस कर दो।
क्यों?
अरे ये बहुत महंगी है, जाके वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए।
कोई बात नहीं है, तुम्हारे सर का सदका, ये चीजें अहम नहीं है। जरा हमारे हालात सुधरने दो, मैं तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूंगा, तुम्हें तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा।
तो यूनिवर्सिटी को मुकम्मल खैरबाद कह दिया ना।
वाकई में चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के 3-4 बेहतरीन साल उस काम में लगाऊं जो मुझे पसंद ही नहीं।
मुर्गे की एक टांग है ना।
देखो, अगर तुम्हारा मसला तुम्हारे अब्बू है तो मैं उनसे बात करूंगा। इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी रजायत शर्त है। देखो नाज़नीन, देखो अगर तुम्हारे लिए मेरा डिग्री लेना इतना अहम है तो ठीक है, जब कारोबार चल जाएगा तो पढ़ाई शुरू करके डिग्री भी ले लूँगा।
असल में मेरा मसला तुम्हारी डिग्री लेना नहीं है।
तो फिर क्या है?
मैं नहीं चाहती कि हम कभी भी अब्बू के ख़िलाफ़ जाएं।
यकीन मानो, जब तुम्हारे अब्बू देखेंगे, उनका दामाद एक तेज तर्रार होशियार इंसान है और हर चीज़ पर ध्यान रखता है, तो उस सूरत में पढ़ाई जैसी मामूली और छोटी सी शर्त को खुद ब खुद छोड़ देंगे। मैं खुद को जानता हूँ ना, जानता हूँ कि अगर पढ़ना हुआ तो मुझे बाकी 2 साल की जगह 4 साल पढ़ना होगा, तब जाके डिग्री मिलेगी, जो मैं नहीं जानता ये डिग्री मेरे किस काम आएगी और उसका क्या करूँ। अगर तुम राज़ी हो तो मैं अभी से काम शुरू कर दूँगा, ताकि तुम्हारे लिए ऐसी शानदार ज़िंदगी बनाऊँ जिसको देख के लोग रश करें।
अच्छा, तो अब उसे क्या कहोगे, खुद बता दोगे?
हाँ नाज़नीन, बताऊंगा। तुम अपने वालिद को मुझ पर छोड़ो, अपना ज़हन इस बात में मत उलझाओ। मैं तुम्हारे अब्बू को जानता हूँ, वो एक मंतिकी इंसान है, उनको जैसा मैंने देखा है गैर मंतिकी इंसान बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे।
मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती, अब्बू लोग नहीं मानेंगे, ये बात उनके लिए बहुत अहम है।
मेरे लिए किसी की बात अहम नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी राय अहम है। अगर तुम वाकई में इतना चाहती हो कि मैं पढ़ूँ और मेरे यूनिवर्सिटी जाने पर इतना इसरार करती हो, ठीक है, अगरचे मेरे लिए मुश्किल है लेकिन जाऊंगा।
तो मैं बिल्कुल इस मौजू पर अब्बू से बात ही नहीं करूंगी, तुम खुद ही करना।
ठीक है, मैं खुद ही बात करता हूँ। हेलो, हाँ सईद, कैसे हो? ठीक हो? मैं तुमको फ़ोन करूंगा, इस वक्त कहीं फंसा हुआ हूँ। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? ज़रूर गलती हुई होगी। नहीं यार, तुम शक नहीं करो, ज़रूर कोई गलती है। अच्छा तुम जाके उनसे पूछो आखिर किस लिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके उनसे पूछ लूँगा। ठीक है ठीक है, मैं खुद आपको फ़ोन कर लूँगा। खुदाफिज़। खुदाफिज़।
क्या हुआ?
कुछ नहीं, मेरे एक दोस्त का चेक बाउंस हो गया है, जाके देखना होगा क्या हुआ है।
तो तुम अब्बू से कह दोगे ना?
हाँ हाँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा।
ये पता नहीं इस हबड़ दबड़ में मेमारियत ने अपने फोन की बंद कर दिया है। ये बताओ कि सईद ने नहीं पूछा कि उसके अकाउंट क्यों बंद है?
नहीं यार, वो खुद भी बुरी तरह डरा हुआ था, कह रहा था उस तरफ बिल्कुल नहीं आना वरना मुमकिन है तुम लोगों को भी पकड़ लिया जाए।
गिरफ्तार कर ले? क्यों, ऐसे वैसी बात है क्या?
मैं नहीं जानता, शायद उनको पता चल गया है।
किस चीज़ का पता चल गया है?
इस बात का कि हमने लोन सिफारिश और ताल्लुकात वगैरह की बुनियाद पर लिया है।
कहाँ से उन्हें पता चलेगा?
मैं क्या जानूं?
अगर उन्हें पता भी चल जाए तो रकम तो अकाउंट में डालने से पहले समझ जाते।
तो अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ? शायद उनको पता चल गया होगा ना। जरूर
नहीं, कोई ज़रूरी दफ्तरी काम पेश आया है, तुम इत्मीनान रखो।
समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों होता है।
तुम परेशान ना हो भाई मेरे, हाल हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत भी हर बात बिगड़ जाती है, ठीक हो जाएगा ना भाई।
डेढ़ अरब ले के चुपके से भागना चाहता है।
अपने आप को बहुत चालाक समझता है।
अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो? हमने ऐसा क्या किया जो डरे? अगर उन्होंने कुछ कहा भी तो हम मेमारियान के सर पर डाल देंगे।
नहीं माना तो फिर?
नहीं भाई ऐसी बात भी नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें अगर इस हालत में देखेंगे तो समझेंगे तुमने कत्ल किया है। अपनी बातें भूल गए, तुम काम सख्त है और वगैरह वगैरह।
बैठिए 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 बैठिए
जी।
जराफर अहमद साहब
जी,
ये आपके दस्तखत है?
नहीं,
गौर से देखिए, इसको कह रहा हूँ मैं।
हाँ ये मेरे दस्तखत है
जी। बहुत शुक्रिया।
सियावश मैं कहता हूँ उठो चलते हैं, इससे पहले के मामला और बिगड़ जाए।
बैठो, कहाँ जाओगे? उनके पास हमारा फोन नंबर भी है, घर का एड्रेस भी। अरे
तशरीफ लाइए, आइए।
बहुत शुक्रिया।
आइए अंदर आइए।
सलाम अलैकुम।
अस्सलाम अलैकुम।
जाइए, जाके बैठिए।
तो मेहदी हो ना?
जी।
आखिरी बार जब देखा था तो इतना सा था। तुम ठीक हो मेहदी बेटा? तुम्हारे अम्मी अब्बू लोग कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से ठीक है।
क्या आखिर तक खड़े रहेंगे? आइए बैठिए, तशरीफ रखिए।
बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं।
जी हाँ, हम तो स्कूल में काम करते हैं ना, और देखते हैं कि बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं और मसाइल में गिरफ्तार।
हम चलते हैं ताकि आप इजी होके बात करें, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। खुदा हाफिज। चलिए।
चलिए।
आप ठीक हैं जीजान?
शुक्र है ठीक हूँ। क्या हुआ, अचानक चाची की याद आ गई?
हम तो हमेशा आपकी याद करते थे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि।
तुम्हारी पप्पी ठीक है?
ठीक है, लेकिन अफसोस के दादा जान की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है।
क्यों? मैंने कुछ ही अरसे पहले उनको सड़क पर देखा था, बिल्कुल ठीक थे। अलबत्ता उन्होंने मुझे नहीं देखा, हुमा साहिबा के साथ शॉपिंग करने आए थे। लेकिन हाजी साहब की तबीयत ठीक थी, जाहिरन बीमार नहीं लग रहे थे मेहदी बेटा।
हाँ, जिस्मानी लिहाज से खुदा का शुक्र है ठीक हैं, लेकिन रूही लिहाज से बीमार हैं। चची जान, आप फैमिली से इतनी दूर क्यों हो गई हैं?
मेहदी साहब, इसकी दास्तान बहुत तवील है।
बहुत अजीब है, हम सब खुद को मुसलमान समझते हैं, लेकिन हमारा कोई भी अमल मुसलमान वाला नहीं है।
जानती हूँ।
मैं माजी के बारे में बात नहीं करना चाहता, माजी को छोड़िए, खुदा के लिए अब उठ के मेरे साथ आएं। आएं दादा जान के घर, मालूम नहीं हो कब तक जिंदा है। ये इंसाफ नहीं है कि आखिरी उम्र में हसरत में रहें वो।
खुदा उनको लंबी उम्र दे इंशाल्लाह।
ये तो आप तकल्लुफात की बात कर रही हैं।
लीजिए चाय लीजिए।
शुक्रिया।
चची जान, खुदा के लिए आइए चलते हैं मुनीरी वाले घर में, मैं खुद भी वहीं रहता हूँ। खुदा की कसम, फूफी लोग आपको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे।
शायद अब खुश हो जाए, लेकिन बाद में पहले से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हर चीज़ को इसी तरह रहने दो। उनके जहन में अभी वही हशाश और बशाश हमीद और सुसन रहते हैं।
आपको लैला की फिक्र नहीं है?
अगर उसकी फिक्र न होती तो शायद मैं इन तमाम सालों में इसलिए नहीं आई तुम्हारे पास ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे।
इस दूर रहने का कोई मुस्बत नतीजा मिला?
महनूश और मेहरान कैसे हैं?
चची जान, आपकी मदद की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि दादा जान उम्र के इस आखिरी हिस्से में उदासी की जिंदगी गुजारे।
मैंने जो भी किया सिर्फ इस खातिर किया कि कोई और हमारी इस मुसीबत ज़्यादा ज़िंदगी से मुतासर ना हो। मेहदी साहब, तुम्हें बहुत से हकायक का इल्म नहीं है।
इल्म है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ।
अगर जानते हो तो ये भी समझते होगे कि ख़ानदान के साथ हमारा मज़ीद आना जाना सब कुछ और ख़राब कर देगा। अगर मैं जानती कि यहाँ मेरा नाना मसले को हल कर सकता है तो हरगिज़ ना आती। लेकिन सोचा तुम लैला को देख लोगे और उसे बता दोगे। सच कहूँ तो मैं डर गई थी।
आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपकी इजाज़त के बगैर कभी भी लैला से बात नहीं करूँगा। अगर आप न मिलती तो लैला को ढूंढ लेता और उसका ताकुब करता ताकि आपके घर तक पहुँचूँ, लेकिन वो चूँकि मुझे नहीं जानती इसलिए मैं उससे बात नहीं करता। चाची जान, मैं अब अकेला नहीं रहने दूंगा आपको, आपको फैमिली से दूर नहीं रहने दूंगा। मैं आप और हमीद चाचा की मदद करने आया हूँ। मैं जानता हूं कि हमीद चाचा इन दिनों
हमीद की अब ऐसी हालत हो गई कि खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकता।
आप ऐसा क्यों कह रही हैं चाची जान? ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो पहले एडिक्ट थे लेकिन नशा छोड़ के वापस आ गए अपनी ज़िंदगी में, अब पूरी तरह से सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसानों को अकेला छोड़ देना और उनकी मदद न करना और भी बुरा है। इसका मतलब ये है कि हम उनसे कहते हैं जाओ जो चाहो करो। ऐसे में तो कसूर हमारा हुआ ना, हमने तो इब्तदा ही से गलती की। हमें दादा जान को बता देना चाहिए था इस पूरी बात को।
मैंने तुम्हारे चाचा से वादा किया था कि नहीं बताऊंगी। दूसरी बात यह है कि मैं खुद भी हाज नेमत से ऐसी बात नहीं कर सकती। उन्होंने नेकी के अलावा मेरे हक में कभी कुछ भी नहीं किया है। मैं ये बात बताकर उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी।
मुड़ना नहीं, देखना नहीं, पता नहीं किस बात पर शक हो गया उन्हें। हो सकता है चूंकि रकम बहुत ज्यादा है इसलिए बारीक बिनी से काम कर रहे हैं।
बकवास क्यों कर रहे हो? अरे रकम तो हमारे हिसाब में डाल दी गई है।
ठीक है,
फरामन साहब, असली कागजात कहाँ हैं?
आपने तो वापस कर दिए थे।
हमने?
मेमारियान साहब जो आपके बैंक के ब्रोकर हैं उन्होंने कहा था कि मुझे कागजात की जरूरत नहीं है।
ऐसे कैसे मुमकिन है? कागजात तो बैंक में गिरवी के तौर पर रहते हैं, आपके कागजात तो कचेरी से भी नहीं गए हैं।
बैंक के मैनेजर ने खुद हमें कागजात वापस किए।
फरहमन साहब।
जी जी, मैं हूँ।
आइए, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा।
माफ कीजिएगा, कहाँ?
बैंक की सिक्योरिटी में।
किस लिए?
आप आइए, आपको बता दिया जाएगा। आइए।
जनाब आप भी आइए।
कौन, मैं?
जी हाँ आप।
मैं किस लिए? कागजात तो मेरा नाम तो है नहीं।
डॉक्यूमेंट में उनका नाम भी नहीं है लेकिन हमें मालूम है किसके नाम। आइए। तशरीफ लाइए, बैठिए। ठीक, अच्छा अच्छा, बैठिए, तशरीफ रखिए, आप जाइए।
माफ कीजिएगा सर, कुछ हुआ है क्या?
मेहरान फरहमान साहब?
जी मैं हूँ।
आपने लोन के लिए दरखास्त दी थी?
जी हाँ।
तो असली कागजात कहाँ हैं?
घर पर।
आप कैसे नहीं जानते?
कुछ हुआ है तो मुझे भी बताएं ना।
आप कैसे नहीं जानते कि क्या हुआ है?
खुदा की कसम मैं नहीं जानता।
यानी वाकई में आपको नहीं मालूम कि ये कागजात आपके नहीं हैं? हमने कचहरी से मालूमात मांगी है, कागजात जनाब कागजात जनाब अमीर शालजी महबूदी के नाम हैं। जी
जनाब, हमने बहुत पहले लोन की दरख्वास्त दी थी, यानी प्रॉपर्टी बेचने से पहले। हमने ये प्रॉपर्टी हाल ही में बेची है, कुछ ही दिन पहले।
हमने मालूमात ली है, कागजात में लोन के बारे में कुछ दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी ये कि प्रॉपर्टी के मालिक के दस्तखत क्यों बैंक के दस्तावेज में नहीं है?
मैं उनकी तरफ से वकील था।
कोई अथॉरिटी लेटर है?
उन्होंने मुझे जबानी तौर पर अथॉरिटी दी थी कि मैं उनके बैंक के काम अंजाम दूं।
अच्छा, और उसके बाद कागजात में लोन को दर्ज किए बगैर उन्होंने प्रॉपर्टी के बेचने का इरादा किया है ना?
देखिए, तय पाया था कि हम प्रॉपर्टी के कागजात के बजाय जमानत के तौर पर प्रॉमिसरी नोट दें।
अच्छा, प्रॉमिसरी नोट 1.5 अरब तुमान लोन के बदले, ठीक है। और हाँ, अथॉरिटी लेटर किसके नाम है?
मेहदी फरहमन, मेरे भाई हैं।
अपने भाई का फोन नंबर लिख दो।
किस लिए?
अथॉरिटी लेटर आपके भाई के नाम है, उनको वजाहत देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा।
लेकिन देखिए, मेरे भाई को किसी बात का इल्म नहीं।
ज़ाहिरन तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन उनको यहाँ आके वजाहत देनी होगी कि उनके कागजात और अथॉरिटी लेटर किस तरह से बैंक पहुँचे हैं।
लेकिन जब उनको इल्म ही नहीं है तो किस चीज़ के बारे में वजाहत दे?
देखिए जनाब, उनको इतला देनी ही होगी। आपने 1.5 अरब तुमान लोन की दरख्वास्त दी है, लेकिन ये एक तुमान के लिए भी कोई सिक्योरिटी और जमानत नहीं रखी है। आपके ख्याल में यह कानूनी है?
माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन क्या बैंक हमेशा इतनी एफिशिएंसी दिखाता है? क्या आपने उस 3000 अरब तुमान के गबन के लिए भी कुछ सिक्योरिटी ली थी?
देखिए, मेमारियन साहब ने हमसे कहा था कि हम प्रॉपर्टी के कागजात के बजाय 3 गुना प्रॉमिसरी नोट रखवा दें। उन्होंने कहा कि बैंक की मैनेजिंग मान गई है, वरना हम अपनी प्रॉपर्टी हरगिज ना बेचते।
मेमारियन साहब कौन है?
बैंक के एजेंट।
आपको वहाँ कहाँ से मिले?
अखबार के जरिए।
अब तक कितनी दफा आपके लिए लोन ले चुके हैं वो?
पहली दफा है।
ये दफ्तर का एड्रेस कहाँ है?
हमारे पास उनका एड्रेस नहीं है, सिर्फ फोन नंबर है।
ताज्जुब है, आप उसको जानते तक नहीं थे और प्रॉपर्टी के कागजात और अथॉरिटी लेटर उसको दे दिए।
माफ कीजिएगा जनाब, अगर उसका काम गैर कानूनी है तो अखबार में इश्तहार कैसे देता है?
सियावश।
लेकिन क्यों सर, अगर उसका काम जुर्म है तो अखबारात में इश्तहारात को क्यों नहीं रोकते? हम भी जवान हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, दूसरों की तरह हमें भी पैसे चाहिए। उन्होंने कहा हमारे लिए लोन ले सकता है, क्या लोन लेना गैर कानूनी है?
हम 100 दफा नोटिस दे चुके हैं कि अखबारों के इश्तहारात पर भरोसा ना करें।
हमने आपका नोटिस नहीं देखा तो हमारा काम गैर कानूनी हो गया?
नकल और जाल गैर कानूनी काम है।
जनाब, किस चीज को हमने जाल किया है?
ये तुम्हारे दस्तखत हैं?
जी।
क्या कागजात तुम्हारे नाम थे जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं? बैंक के स्पेशलिस्ट कहते हैं कि दस्तखत जाली हैं और अथॉरिटी लेटर के मालिक जनाब मेहदी फरहमन के दस्तखत नहीं हैं।
जनाब, वो प्रॉपर्टी मेरे और मेरे भाई के पास है, उनको उस दिन काम था, मैंने उनकी जगह दस्तखत कर दिए।
तो आप फरमा रहे थे कि उनको लोन लेने का बिल्कुल ही इल्म नहीं है? फोन करो, अपने भाई को बुलाओ।
जनाब, किस लिए? मेरा भाई है, उनको किसी चीज का इल्म नहीं है, मैं लोन लेना चाहता था।
अगर उनको वाकई इल्म ना हो तो तुम्हारे जुर्म में अमानत में खयानत के जुर्म का भी इजाफा हो जाएगा।
Yes, sir.
فی الحال تم دونوں گرفتار کیے جاتے ہو, تشریف لے چلے.
گرفتار کس لیے؟ فیملی کو اگر پتا چل گیا وہ بہت مشکل و مصیبت میں ہے اس وقت, بہت برا ہو جائے گا میرے لیے.
جناب فراہمان صاحب, آپ کا جرم بہت سنگین ہے. جعلی دستخط, حکومتی دستاویزات کا غیر قانونی استعمال اور بینک کو دھوکہ دینا. فون کر کے اپنے بھائی کو بلاؤ.
لیکن آخر کیوں؟